शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी ने अभी अभी तीन बारी ओम शांति का शब्द उच्चारण किया, उसका अर्थ हम यही ले सकते हैं। पहली ओम शांति हमको आत्मा की स्मृति याद दिलाते हैं, हम आत्मा बिंदु हैं। और दूसरी ओम शांति क्या याद दिलाता है, बाबा भी बिंदु हैं। और तीसरी ओम शांति क्या याद दिलाता है, ड्रामा भी बिंदु। बस सारे ज्ञान का सार इन तीन बिंदुओं के अंदर है। अगर आपको और कोई भी बात ज्ञान की याद नहीं आता है, याद नहीं कर सकते, अनपढ़े भी तीन बिंदु को तो याद कर सकते हैं, है ना? तो बस यही सच बहुत सहज से सहज विधि है माया जीत बनने का, तीन बिंदु, इसमें हम प्रवीण बन जाएंगे। यहां पर जो भी हम बैठे हैं डायमंड हॉल में, अपने आप को हम क्या समझते हैं, मैं कौन हूं? हम सब राजयोग के अभ्यासी, हमारा नाम है राजयोगी, है ना? आप सभी राजयोगी है ना? तो राजयोगी का दूसरा अर्थ क्या होता है, स्वराज्य अधिकारी। राजयोगी माना स्व के ऊपर राज्य करने वाले, राजा। तो अपने आप से हमको पूछना चाहिए कि क्या हम अपने ऊपर राज्य कर सकते हैं? तो स्व के ऊपर राज्य करना माना आत्मा की जो तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, सबसे पहले उसके ऊपर राजा बने। तो हम तो कहते हैं मन, बुद्धि, संस्कार हमारी राजधानी के मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं। आत्मा राजा है और ये तीन शक्तियां आत्मा के मिनिस्टर्स हैं। और उसके बाद पांच कर्मेंद्रिया, ये हमारी प्रजा है। और हमारे सर्वेंट्स कौन है, आठ शक्तियां। तो हमको इस छोटे राजधानी में इन सब के ऊपर राज्य करके स्वराज्य अधिकारी बनना है, क्योंकि जितना ज्यादा समय हम स्वराज्य अधिकारी होकर के रहेंगे संगम युग में, उतना ज्यादा समय भविष्य में हम राजा या महाराजा बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम पूछे मन, मन के ऊपर हमारा राज्य है या मन हमारे ऊपर राज्य करता है? आप सोचिए, कहते तो है ना मेरा मन, मेरा संकल्प। मन क्या चीज है, संकल्प शक्ति। तो अगर मन में अभी तक भी व्यर्थ संकल्प चलता है तो ये राज मन के ऊपर राज्य करना हुआ नहीं हुआ ना? तो जबकि हम कहते हैं मेरा मन, तो मैं मन को चलाने वाली आत्मा मन से अलग हूं ना? तो क्यों नहीं मन के ऊपर हम राज्य कर सकते हैं? क्योंकि जैसे अभी बाबा ने कहा था, कर्म इंद्रियों को भी हम मेरा कान, मेरा नाक, मेरा हाथ कहते हैं, तो हम इस कर्म इंद्रियों को जैसे चाहिए वैसे चला सकते हैं ना। ये मेरा है ना, हाथ मेरा है, उसको हम ऊपर उठाना चाहे नीचे करना चाहे हम कर सकती हूँ। तो वैसे ही मन भी आत्मा के एक अंग ही समझो, शक्ति है ना, तो क्यों नहीं मन मेरा मानता है। अभी तक तो हम अज्ञान में थे, अपने आप का परिचय नहीं था, अपने को हम देह समझते थे, तो मन हमारे ऊपर राज्य करता था। अभी हमको ये ज्ञान बाबा ने दिया है कि तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। तो जबकि हमको आत्मिक स्मृति आ गई है, फिर भी बार बार हम विस्मृति में क्यों चले जाते हैं? अपने को आत्मा भूल के देह के अभिमान में आ जाते हैं। तो मन को चांस मिलता है कि उसको जैसा चाहिए वैसे हमको चलाते। हम मन के ऊपर अभी तक राजा नहीं बने हैं, तभी हमारे अंदर से ये कंप्लेन निकलता है कि अभी तक हमारे मन में व्यर्थ संकल्प आता है। हम व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए बाबा ने यही बताया है कि बाबा हम सबको कैसे देखना चाहते हैं, मन जीत। क्योंकि जो मन के ऊपर जीत पहन सकते हैं अभी, वो जगत जीत बन सकते। अभी तक तो हम सुनते थे माया जीत तो जगत जीत, पर बाबा ने अभी उसको थोड़ा परिवर्तन करके बताया है, मन जीत तो जगत जीत। तो मन को जीतने के लिए, माना मन को हम जैसे चाहिए, जहां चाहिए, जितना समय चाहिए उतना समय हम अपनी संकल्प शक्ति को लगा सके, उसको कहते मन जीत। जब हम मन को कहे स्टॉप, स्टॉप। जब हम मन को कहे स्टार्ट, स्टार्ट। ऐसा नहीं कि हम मन को कहे स्टॉप और मन चलता ही रहे। जैसे कार में ब्रेक होता है ना, कार की ब्रेक ढीली होती है तो क्या होता है, एक्सीडेंट की संभावना होती है, तो हम ब्रेक लगाते हैं तो लगता नहीं है, 10 मिनट के बाद लगता है एक्सीडेंट होने के बाद, तो क्या समझा जाएगा, ब्रेक वीक है, तो उसको ठीक करना पड़ता है ना। तो वैसे ही हमारा मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, माना ब्रेक पावरफुल नहीं है, ढीला है। तो अगर हम मन के ऊपर जीत पहनना चाहते हैं, तो हमको सबसे पहले कौन सी बात को पक्की करनी पड़ेगी, आत्मिक स्मृति को। क्योंकि मन क्या है, घोड़ा, और बुद्धि क्या है, घोड़े सवार। तो आप इमेजिन कीजिए, घोड़े सवार घोड़े पर भी बैठा है, तो भी घोड़ा घोड़े सवार को चला रहा है, घोड़े सवार घोड़े को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मिसिंग है, लगाम। लगाम घोड़े सवार के हाथ में नहीं है, तभी घोड़ा गाड़ी को चला रहा है। वो लगाम कौन सी, आत्मिक स्मृति। तो क्या हो जाता है जब हम बाबा के पास आते हैं, तो पहला लेसन हमको बताया जाता है, तुम आत्मा हो। तो हम सुनते हैं और समझते हैं, पर अभ्यास नहीं करते। तो अगर अभ्यास हम जास्ति करेंगे आत्मिक स्मृति का, तो हमको ये स्मृति रूपी लगाम हमारे हाथ में होगा, तो हम घोड़े को, मन रूपी घोड़े को जैसा चाहिए वैसा हम चला सकते हैं। वैसे देखा जाए हम सबके अंदर दो आदतें हैं, सबके अंदर है, ज्ञानी और अज्ञानी में। पता है कौन सी आदत? स्मृति और विस्मृति, याद करना और भूलना, है ना? ऐसा कोई है इस सभा में जो कहते हैं मेरे को याद करना ही नहीं आता है या हमको भूलना ही नहीं आता है? आता जरूर है, परंतु गलती हम क्या करते हैं? जो याद करना है वो भूल जाते हैं, जो भूलना है वो याद करते। तो इसलिए लगाम हमारे हाथ से निकल जाता है। तो आज से लेकर आपको मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर जीवन में धारण करना हो तो क्या करना चाहिए? जो याद करना है उसको याद करना है, बाकी भूलने का पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो याद करना है उसको याद करेंगे, जो भूलना है आप ही भूल जाते हैं। जैसे जहां पर अंधकार होता है तो आपको क्या चाहिए? रोशनी चाहिए ना, तो आप सिर्फ स्विच दबा दो, रोशनी आ गई, अंधकार आप ही भाग जाएंगे, आप उसको भगाने की कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए आत्मिक स्मृति स्वरूप, सिर्फ स्मृति नहीं, कभी याद किया कभी भूल गए ऐसा नहीं, लगातार आत्मिक स्मृति स्वरूप की स्थिति बना के रखते हैं तो ऑटोमेटिकली मन जो हमारी शक्ति है, हमारी मिनिस्टर है, हमारे परमिशन के बिना एक भी संकल्प नहीं कर सकते। तो ये आत्मिक स्मृति के अभ्यास की कमी के कारण हम बार बार विस्मृति की स्थिति में चले जाते। कई बार हम लोगों से पूछते हैं, ये जो बाबा माया माया कहते हैं ना, माया आती है माया आती है, माया क्या चीज है? माया क्या है? विस्मृति ही माया है। जब हम भूल जाते हैं ना, मैं आत्मा हूं, शरीर की स्मृति में आ जाते हैं, तो वही माया है, क्योंकि शरीर की स्मृति में पांच विकार तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अटेंशन हमको क्या रखना है मन जीत बनने के लिए? सबसे पहली बात कि अपनी आत्मिक स्मृति के अभ्यास को बढ़ाना है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति स्वरूप। स्मृति स्वरूप का मतलब कि लगातार स्मृति बनी रहे। हमने सुना है ब्रह्मा बाबा अपने जीवन में आत्मिक स्मृति का इतना अभ्यास किया था, इतना अभ्यास किया था, जो भी बाबा के सामने आते थे वो बिना बोले शरीर भूल जाते थे, आत्माभिमानी बन जाते थे। तो हमारा जो आत्मिक स्मृति स्वरूप का अभ्यास इतना होना चाहिए, जो हम तो अपने शरीर को भूल जाए परंतु हमारे सामने जो भी आवे उनकी, उनको अपनी देह की विस्मृति हो जाए। तो लगाम, लगाम हमारे हाथ में होगा तो मन कहां भागेगा नहीं। देखिए अभी तक भी हम क्या कहते हैं, योग में बैठते हैं तो मन भटकता है, अभी तक भी है ना कंप्लेन, क्यों भटकती? वैसे तो बाबा के साथ तो बहुत प्यार है, बाबा को भूल नहीं सकते, फिर भी बाबा की याद क्यों नहीं टिक सकता? क्योंकि हम आत्मा होकर के बाबा को याद नहीं करते, आत्मिक स्मृति भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये नहीं कहो कि हम बाबा को भूल जाते हैं। आप बाबा को भूल नहीं सकते, पर क्या भूल जाते? मैं आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये अभ्यास इतनी पक्की होनी चाहिए जो नींद में भी कोई पूछे तो हमको भूल ना जाए। तो मैं तो समझती हूं सबसे पहली विधि मन जीत बनने का यही है कि आत्मिक स्मृति स्वरूप बनने का अभ्यास को बढ़ाना, ताकि लगाम हमारे हाथ में रहे तो हम मन को जैसा चाहिए, जहां चाहे और जितना समय चाहे उतना समय वहां पर हम मन को लगा सके। और दूसरी विधि क्या है मन जीत बनने का? आत्मा का दूसरा मिनिस्टर है बुद्धि। मन का काम है संकल्प चलाना, क्योंकि जो आत्मा में संस्कार होता है उसी अनुसार संकल्प तो आएगा ही, परंतु मन जीत बनने के लिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना है? दूसरी विधि बुद्धि को जागृत रखना है। भले बाबा ने आकर के हमको कुंभकर्ण की नींद से जगाया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बुद्धि सदैव जागृत है। जब बुद्धि जागृत रहती है उसकी निशानी ये होंगी कि उसके जीवन में निर्णय शक्ति ठीक काम करता है। तो संकल्प जब मन में आता है तो बुद्धि जागृत है, तो निर्णय कर सकती है ये व्यर्थ संकल्प है ये शुद्ध संकल्प है। तो शुद्ध संकल्प को लेकर के व्यर्थ संकल्प को छोड़ देंगे। परंतु आज क्या हो गया है कि हमारी बुद्धि अज्ञान की नींद में नहीं सोई है, अलबेलापन की निंद्रा में है। तो बीच बीच में अलबेलापन की नींद में चले जाते हैं तो मन को चांस मिलता है अपनी शक्ति को चलाने का। तो हम ये अटेंशन रखें कि बुद्धि को सदैव जागृत रहे। बुद्धि सदैव जागृत रहेंगी तो निर्णय शक्ति ठीक काम करेगा। तो मन में भले संकल्प आवे परंतु उस संकल्प को हम चेंज कर सकते, हमारे अंदर वो शक्ति आएंगे। ये दूसरी विधि आप यूज करके देखिए। तो बुद्धि कब जागृत रहेंगे? स्मृति के आधार से ही बुद्धि की जागृति होती है। जितना जितना हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं उतना ही हमारी बुद्धि जागृत रहेंगे। जैसे ही शरीर की स्मृति आ गई तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। बुद्धि को जागृत रखने का मतलब कि तीसरे नेत्र को खुला रखना। शिवरात्रि के दिन लोग क्या करते हैं? जागरण करते हैं ना, वो तो ये दो आंखें खोल के बैठते हैं। बुद्धि की जागृति होंगी तो ऑटोमेटिकली हमारी निर्णय शक्ति बढ़ेगा और निर्णय शक्ति के आधार से हम यथार्थ बात को समझ सकते हैं। और तीसरी विधि मन जीत बनने के लिए हम यही यूज कर सकते हैं अपने जीवन में कि रोज सवेरे, जैसे साकार बाबा भी यही विधि अपनाते थे कि रोज सवेरे मन बुद्धि संस्कार तीनों को बुला के एक मीटिंग करें और हरेक मन बुद्धि संस्कार को कुछ न कुछ ड्यूटी देवे। मन को आज क्या करना है, बुद्धि को क्या करना है, कौन सा संस्कार अपनाना है, और उसके बाद कर्मेंद्रियों को भी अपनी अपनी ड्यूटी दे। उसके बाद फिर सारे दिन के अंदर चेक करके देखते रहे जो भी ड्यूटी हमने सवेरे दिया था वो ठीक कर रहे हैं या नहीं। फिर रात को कहते कचेरी, माना सबको बुला करके हम पूछे कि जो काम दिया था आज सारा दिन वो कहाँ तक किया है, और कोई भी कर्मचारी या कोई भी आत्मा की शक्ति जो काम दिया था अगर वो नहीं किया है तो हम कोई ना कोई पनिशमेंट दे दें। तो इससे हम मन को डिसिप्लिन में ले आ सकते हैं। जब तक मन की डिसिप्लिन नहीं है, कोई भी प्रकार का शासन नहीं होता है, तो मन हमारी बात को नहीं मान सकते। तो इसके लिए थोड़ा सा समय निकाल करके हम ये जरूर लक्ष्य रखें कि हम बैठ करके अपने आप से बातें करें और हम मन बुद्धि संस्कार को कुछ न कुछ ड्यूटी दें, फिर शाम को चेक करके देखें वो किया है या नहीं, तो धीरे धीरे मन को हम सही रास्ते पर ले आ सकते। कई समझते हैं मन को कंट्रोल करना माना मन को दबाना, दबाना कोई मन को सुधारना नहीं है। अगर समझो आपके घर में भी आपके बच्चे चंचल हैं, तो आप बच्चे को दबा करके चुप कराएंगे तो वो सुधरेगी नहीं ना। परंतु क्या करना चाहिए, बैठ करके बात करना है, उसको समझाना है, समझा करके उसमें परिवर्तन लाना है। तो ऐसे ही हम मन के ऊपर भी अगर जीत पहनना चाहते हैं, मन भी एक छोटा बच्चा है। कई बार ऐसा होता है ना कि छोटे बच्चे कोई ऐसे चीज से खेलते रहते हैं जिससे उसको भी नुकसान हो, परंतु बच्चों से पूछेंगे तो वो चीज आपको देंगे नहीं, हट करेंगे। परंतु अगर आप समझदार हैं तो बच्चे को और अच्छी चीज कुछ न कुछ दे देंगे तो वो छोड़ देगा जो हाथ में रखा है, तो खुद बच जाएंगे। तो ऐसे ही मन को हम हट से कंट्रोल करने का नहीं, परंतु उसको और अच्छी विचार हम दे देते हैं तो जो विचार पहले कर रहा है मन उसको आप ही छोड़ देंगे। तो इसके लिए रोज अमृत वेले के बाद हम अपने आप से बैठे और हम जैसे टीचर स्टूडेंट को होमवर्क देते हैं ना कि आज ये होमवर्क करना है, ऐसे हम मन बुद्धि को कुछ न कुछ होमवर्क दे दें, तो फिर उसके बाद हम उसको चेक करें तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे मन आपके कंट्रोल में आता रहेगा। और दूसरी बात बाबा ये भी बताते हैं कि जब तक हम अपने को बालक सो मालिक नहीं समझते हैं तब तक मन का मालिक नहीं बन सकते। सबसे पहले हम बालक समझें, हम परमपिता परमात्मा के बालक हैं, तो बच्चे के नाते से हमको बाबा से क्या मिलता है, सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त होता है। तो जब हम बालक ही नहीं समझते तो मालिक मन का नहीं बन सकते। तो अपने को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं कौन और मेरा कौन, मैं किसकी हूं। तो ये जब बालकपन का नशा रहता है तो मालिकपन का नशा ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो जब हम सर्वशक्ति बाबा से वर्षे में लेते हैं तो हम उसको मालिक बनकर के यूज कर सकते, क्योंकि परिस्थिति अनेक हमारे सामने आती है और परिस्थिति के अनुसार हमको अलग अलग शक्तियों को भी यूज करना पड़ता है। तो इसलिए हम बालक, हम किसकी संतान हैं और हमको क्या वर्षा मिला है बाबा से सर्व शक्तियों का, अगर उसकी स्मृति जितना हम रखेंगे तो हम मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, मन जीत बनने के लिए ये दो शक्ति बहुत आवश्यक है। कंट्रोलिंग पावर मन बुद्धि संस्कार के ऊपर और कर्मेंद्रियों के ऊपर रूलिंग पावर, जिसके अंदर ये दोनों शक्तियां हैं उसको ही कहा जाता है मन जीत। वो मन को जहां चाहिए जैसा चाहिए जितना समय चाहिए वहां लगा सकते। यू नो बाबा कई बार हमको याद दिलाते हैं अपना स्वमान कि बाबा जैसे सर्वशक्तिवान हैं, हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो ये स्वमान की सीट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर आप इस स्वमान की सीट पर सदैव स्थित रहेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो ऑटोमेटिकली सब शक्तियां आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। परंतु जब हम ये स्वमान को भूल जाते हैं तो बाबा का साथ भी छूट जाता है और शक्तियों का मदद भी हमको नहीं मिलता। कई बार कई बाबा के बच्चे कहते हैं बस हम याद करते हैं और शक्तियों को हम आह्वान करते हैं कि फलानी शक्ति आ जाए, अभी सहन शक्ति चाहिए या समाने की शक्ति चाहिए, परंतु समय पर नहीं आता। हाँ, क्यों नहीं आती? वैसे तो शक्तियां हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है ना, बर्थ राइट है। जो जन्मसिद्ध अधिकार होता है उसको तो अधिकार से यूज करना चाहिए, परंतु हम बुलाते हैं तो भी आती नहीं है, तो हम हार जाते। तो इसके लिए भी बाबा ने बताया है क्यों नहीं वो शक्तियां जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है वो आपकी सेवा में क्यों नहीं उपस्थित होते। उसका भी तीन कारण बाबा ने बताया है। पहला कारण बाबा ने बताया है क्योंकि हम बाबा की आज्ञाओं को उल्लंघन करते। जो बाबा के आज्ञाकारी होकर के नहीं चलते हैं, सो शक्तियां भी हमारी आज्ञा को नहीं मानेंगे। तो हमने बाबा की श्रीमत की अवज्ञा की, तो जब हमको कोई शक्ति चाहिए वो शक्ति हमको मदद नहीं करते, तो हम मन के ऊपर जीत नहीं पहन सकते, मन के वश हो जाते, परिस्थिति के वश हो जाते। तो इसलिए हमको चेक करके देखना चाहिए कि कौन सी आज्ञा को हमने अवज्ञा किया है जिसके कारण आज शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होते हुए भी हम उसको यूज नहीं कर सकते। और दूसरा कारण बाबा ने बताया कि कोई भी समय आप शक्तियों को ऑर्डर करते हो तो अपनी सीट पर बैठ करके करो। सीट के लिए सबको सम्मान होता है। तो कई बार हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, देह अभिमान में आकर के हम शक्तियों को ऑर्डर करते हैं, वो नहीं मानेंगे। तो बार बार हमको अपने स्वमान की स्मृति याद दिलानी है। तो उस स्वमान की सीट पर बैठ करके हम जितना हम आह्वान करेंगे शक्ति और गुणों को, वो हमारी बात को मानेंगे। और तीसरा कारण यही है कि समय के संबंधित, समय बहुत प्रबल है, तो अगर हमने समय को रेस्पेक्ट नहीं दिया, समय को व्यर्थ गवाया है, तो समय बदला लेते हैं हमारे से। तो जिस समय जिस शक्ति चाहिए, समय कहता है अभी हम उसको आने नहीं देंगे क्योंकि तुमने हमको स्वमान नहीं दिया है। तो इसके लिए संगमयुगी समय को हमको बहुत महत्व देना है। बाबा ने बताया है ना, एक सेकेंड एक साल के बराबर है। जो कभी भी समय को नहीं गंवाते हैं, समय को सदुपयोग करते हैं, ऐसे आत्माओं के सामने सर्व शक्तियां सेवा के लिए हाजिर होते। तो मन जीत और जगत जीत बनने के लिए हमको मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर सदैव बैठे रहना है। स्वराज्य अधिकारी का दूसरा अर्थ ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा कभी ये नहीं कह सकता कि आज हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी नहीं कह सकता कि हमारे मन में अभी व्यर्थ संकल्प चलता है। तो इसका मतलब कि हम सीट पर सेट नहीं हैं। तो इसलिए हम बार बार अपने आप को सीट पर वापस लेके आना है। और ये भी बाबा ने बहुत सहज विधि बताई है, मन को जीतने के लिए मन को अपना मित्र बनाओ, मन को अपना शत्रु नहीं बनाओ। भगवद गीता में भी लिखा है ना, आत्मा अपना ही शत्रु है और आत्मा अपना ही मित्र है, और कोई शत्रु और मित्र नहीं है। तो हम कैसे अपने मन को मित्र बनाएं? मन को मारना नहीं है, मन को सुधारने के लिए मार के दबा के सुधारना नहीं है। अगर आप अपने मन को मित्र के रूप से देखेंगे तो बहुत प्यार से, बहुत काइंडनेस से उसको हैंडल करेंगे। तो माना कि अपने मन को सदैव अच्छे विचार देना है। अभी अभी आप सुन रहे थे ना कि अगर मन में कुछ खिचड़ा भरा हुआ है तो उसको जब तक निकालेंगे नहीं तो दूसरा कैसे भर सकते हैं। तो इसलिए मन को सुधारने के लिए हमको जितना हो सके अच्छे विचार हम चलाते रहेंगे तो बुरे विचार जो है वो आप ही निकल आएगा। जैसे कहा जाता है ना, एक बकेट में गंदा पानी है समझो, अभी उसको खाली करके उस बकेट में अच्छा पानी भरने का विचार है, परंतु हमको ताकत नहीं है बकेट को उठा करके उसको फेंको। तो सहज विधि क्या है, उस बकेट को नल के नीचे रख दो, नल को खोल दो, जो अच्छा पानी आता रहेगा तो गंदा पानी बाहर आपे ही निकल जाएगा। तो हमको भी ऐसे अभ्यास करना है कि मन को ये नहीं कहो कि तुम यहाँ नहीं जाओ, तुम वहां नहीं जाओ, ये नहीं सोचो, वो नहीं सोचो, तो उसी समय तो मन चुप हो जाते हैं, फिर उसके बाद और फोर्स से संकल्प आता है। हम सब जानते हैं ना, संकल्प कहाँ से आता है? संस्कार के आधार से ना। जो आत्मा के अंदर संस्कार है वो संस्कार के आधार से संकल्प आता है, परंतु वो संकल्प को सोचना या नहीं सोचना आपके ऊपर है। संकल्प तो आएगा क्योंकि मन का काम है संकल्प, पर संकल्प के ऊपर सोचना आपकी चॉइस है। ये थोड़ा आप ध्यान से सुनेंगे, थॉट्स आर यू नो कॉमन, थिंकिंग इज ऑप्शनल। उसके बारे में सोच करके उसको बड़ा करना, इट्स अप टू यू। तो उसके लिए हमको बुद्धि को जागृत रखना है। तो जितना जितना हम अपने मन को मित्र बनाएंगे, प्यार से चलाएंगे, उसके बैठ करके उससे बात करके उसको कन्विंस करेंगे ना। आजकल विदेश में हम देखते हैं ना, माँ बाप बच्चों को दबा करके सिखा नहीं सकते। माँ बाप अपने बच्चों को फ्रेंड के रूप से बैठ करके बातें करते हैं। इतने छोटे बच्चे भी हो ना, तो माँ बाप को ऑर्डर नहीं करना है, वो कभी नहीं मानेंगे, परंतु बच्चे को प्यार से बैठ के समझाएंगे, तुम ऐसा नहीं करो, इससे ये नुकसान होता है, ये नुकसान होता है, उसको कन्विंस करेंगे डायलॉग से, तो फिर वो बच्चा मान करके ठीक चलता है। तो हमारा मन भी ऐसा है। तो हम बैठ करके मन से बातें करें तो मन को कन्विंस करे, फिर मन हमारे सहयोगी बन करके हमारे को साथ देंगे। परंतु एक तरफ हम कहते भी हैं मेरा मन, परंतु फिर भी हम मन को गाली देते हैं, मन इधर उधर भागता है। तो इसका मतलब कि हम अभी तक ये ठीक तरह से नहीं समझा कि मन आत्मा का ही शक्ति है। तो मेरा मन शांत नहीं माना, आत्मा की स्मृति से विस्मृति। तो इसके लिए बाबा ने बताया है कि जैसे कर्मेंद्रियों को हम जैसे चाहिए जहां चाहिए वहां चला सकते हैं, वैसे हम मन बुद्धि को भी वैसे चलाएं, तो उसके लिए हमको डेफिनेटली श्रीमत रूपी लगाम हमारे हाथ में होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होता है कि जब हम ज्ञान में आते हैं ना, नया ज्ञान है, नया परिवार है, नए सेवा है, तो बहुत नशे से हम चलते रहते हैं, हमारा ध्यान दूसरों के तरफ नहीं जाता है, स्वचिंतन में, स्व परिवर्तन में, स्वदर्शन चक्रधारी बन करके चलते हैं। फिर चलते चलते क्या होता है, अटेंशन जो है ना अपने तरफ से निकल करके दूसरों के तरफ चला जाता है, तो फिर क्या हो जाता, स्व परिवर्तन के बदले अवनति हो जाती है, आत्मचिंतन के बदले परचिंतन चलता है, स्वदर्शन के बदले परदर्शन चक्र चलता है, तो फिर आत्मा का जो कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर खत्म हो जाती। तो इसके लिए जितना ज्यादा हम तीन बातें, एक तो स्वचिंतन, दूसरा स्वदर्शन और तीसरा श्रीमत, ये तीनों बातों में हम पक्की रहेंगे तो मन कभी भी हमारा ना माने ये नहीं हो सकता। तो ये चेक करना है कि सारे दिन में हमारी बुद्धि में क्या चक्कर चलता है, सारे दिन के अंदर हम कौन सी चिंतन करते हैं। तो जितना स्वचिंतन, शुभ चिंतन, आत्मचिंतन में हम अपने को बिजी रखेंगे तो उतना ऑटोमेटिकली बुद्धि जागृत रहेगा और हम अपनी निर्णय शक्ति के आधार से मन को सही रास्ते पर हम ले आ सकते। तो मन को कभी भी दबाना नहीं, डराना नहीं है कि तुम ये नहीं सोचो, तुम वो नहीं सोचो। और मैंने ये सहज युक्ति ये भी यूज किया है कि जो मैं नहीं हूं वो सोचने की जरूरत नहीं है, जो मैं हूं वो ही सोचना है। जैसे हम योग में बैठते हैं तो क्या सोचते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं नहीं हूं वो ही सोचते हैं, इसलिए वही बन जाते हैं। मैं देह नहीं हूं, मैं आंख नहीं हूं, मैं मुख नहीं हूं, वो तो हमको पता है ना, तो उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। जो मैं हूं अगर उसकी तरफ हमारा ध्यान ज्यादा जाएगा तो हमारी स्मृति पावरफुल होती जाएंगे। मन का 6 स्टेजेस है, पहले है स्मृति, जैसे आपकी स्मृति होंगी वैसे आपकी स्थिति होंगी। अभी आपको स्मृति में समझो चोर आ गया है, ऐसे स्मृति आ गई ना, चोर की स्मृति, फौरन क्या होगा, भय होगा, आपकी स्थिति में भय हो जाएगा। तो जैसे स्मृति वैसे स्थिति, और जैसे स्थिति वैसे वृत्ति, और जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, और जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। तो जब हम बाबा के पास आते हैं, सृष्टि क्यों बदल जाती है, क्योंकि हमारी दृष्टि बदल गई। पहले हमारी दृष्टि देह की तरफ जाती थी, अभी वो दृष्टि बदल करके आत्मा के तरफ जाता है। तो इसलिए हम सब आत्माओं को अपने परिवार के मेंबर समझ के हम उसको स्वीकार कर सकते। तो हमको सबसे पहली अटेंशन स्मृति की तरफ रखना चाहिए। अगर आप देखेंगे ना तो हम जो सारी सृष्टि चक्र में 5000 साल में 84 जन्म लेते हैं, उन आत्मों में जो संस्कार है, ओरिजिनल संस्कार स्मृति का ज्यादा है, विस्मृति का संस्कार कम है। आप देखो परंधाम में हमारी कौन सी स्थिति थी, स्मृति की स्थिति ना। सत्युग त्रेता में भी हम स्मृति में थे, द्वापर में भी हम इतनी विस्मृति जल्दी नहीं हो गए, ओनली कलयुग में हमारा पूरा विस्मृत हुआ। तो चौथा हिस्सा 25% हमारे अंदर विस्मृति का संस्कार है, 75% स्मृति का संस्कार है। तो इसलिए हम बार बार अपनी स्मृति के संस्कार को इमर्ज करना, तो उसके लिए हमको चाहिए अपने ऊपर अटेंशन। जब हमारे ऊपर से अटेंशन कम हो जाता है फिर अटेंशन के बदले टेंशन आ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा ना कि टेंशन के साथ एक लेटर ऐड कर दो, ए, क्या हो जाएगा? अटेंशन। तो हमारे ऊपर अटेंशन होता है तो हम कभी भी हम फिसलेंगे नहीं, कभी भी हम विस्मृति में नहीं आएंगे। तो इसलिए विश्व के राज्य अधिकारी बनना बाद में, परंतु अभी इस छोटे से संगम युग में हम कहां तक अपने ऊपर राज्य कर रहे हैं, स्वराज्य अधिकारी कहां तक बने हैं वो हमको चेक करना है। अपने संकल्पों के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर, अपने संस्कारों के ऊपर, जब चाहे जो संस्कार हम यूज करना चाहे वो संस्कार इमर्ज हो जाए। आप सब जानते हैं ना, हमारे अंदर भी तीन संस्कार हैं, आदि संस्कार, अनादि संस्कार और मध्यम संस्कार। जितना जितना हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे उतना हम आदि और अनादि संस्कार को इमर्ज कर सकते, पर जैसे ही देह की स्मृति आ जाती तो मध्य का संस्कार आ जाते, तो उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ जाता है। तो इसके लिए हम कभी भी बाबा कल आ रहे हैं ना, तो हम होली मनाने के लिए बाबा के पास आए ना इस बारी होली के उत्सव के निमित्त, तो होली में क्या करते हैं? होली माना हो गया, होली माना जलाना, होली माना रंग लगाना। तो इसलिए अभी तक जो हुआ वो हो गया, तो अभी से लेकर हम बाबा को यही प्रॉमिस करते हैं कि हम कभी भी विस्मृति का संस्कार अपनाएंगे नहीं, विस्मृति की अविद्या, तो ऑटोमेटिकली हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। बाबा भूल जाते हैं ना हमको जो कुछ किया है। एक बारी बाबा ने कहा कि परमात्मा क्षमा का सागर है, तो बाबा तो क्षमा कर देता है पर हम भूलते नहीं हैं। तो इसलिए अभी से लेकर कल बाबा से मिलन मनाने के लिए तैयारी करेंगे, तो हम बहुत अच्छी तरह से बाबा से मिलन भी मनाएंगे और बाबा की जो आश है, बाबा की जो इशारा है हम सबके प्रति कि हम सब राजा बच्चा बने, बाबा तो हमको इस नजर से देखते हैं ना, हम सब राजा हैं, क्योंकि राजयोगी है, प्रजायोगी नहीं है। तो हम सब राजा बच्चा बाबा के, बाबा की आश जो है हम सब मन जीत और भविष्य में जगत जीत बनने का, वो प्रैक्टिकली करके दिखाने के लिए अभी से लेकर अभ्यास हम चालू कर दें। तो अपने आप को हम परिवर्तन करने का संकल्प करेंगे तो ऑटोमेटिकली विश्व में परिवर्तन आ जाएगा। तो ऐसे अगर हम अपनी धारणा के तरफ ध्यान रखेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो हम आगे बढ़ते हुए देखे दूसरों हमको फॉलो करेंगे। तो चलिए इस बारी हम बाबा के साथ ऐसे स्व परिवर्तन, हम मन के मालिक बन गए, हम स्वराज्य अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान बनने का शुभ संकल्प लेकर के बाबा के सामने बैठेंगे, तो बाबा की दृष्टि, बाबा के संग का रंग हमारे ऊपर ऐसा लगेगा, जो हमारे संपर्क में जो भी आएंगे उनको भी ऐसा रंग लग जाएगा। ओम शांति।